अध्याय 14 परमेश्वर का घर। पृथ्वी पर परमेश्वर का घर गिरजाघर नम्र विश्वासी जन के लिए स्वर्ग का द्वार है। स्तुति का भजन, प्रार्थना तथा मसीह के प्रतिनिधियों द्वारा कहे गए वचन स्वर्गीय कलीसिया की उस श्रेष्ठ उपासना के लिए जहां कोई अपवित्र वस्तु कभी प्रेवश नहीं कर सकतो, लोगों को तैयार करने के हेतु परमेश्वर के नियुक्त किए गए साधन है। घर परिवार का मंदिर है और कोठरी या बाग व्यक्तिगत उपासना के लिए अत्यंत एकांत स्थान है, परंतु गिरजाघर समाज का मंदिर है। उसमें समय, स्थान तथा उपासना के ढंग के विषय में नियम होने चाहिए। जो कुछ पवित्र है, जो कुछ ईश्वर आराधना से संबंधित है, बेपरवाही अथवा अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर की बड़ाई करने का शुभ कार्य कर सके, उनका सम्मिलन ऐसा हो जिससे उनके मन में पवित्र व अपवित्र में अंतर होवे। जिनके विचार विस्तृत ख्यालात और अभिलाषाएं उत्तम हैं, वे ही हैं जिनके संबंध ऐसे हैं जो ईश्वरीय विचारों को बल देते हैं। धन्य हैं वे जिनके पास मंदिर गिरजाघर है, चाहे बढ़िया हो या घटिया, नगर में या खुरदरी पहाड़ी गुफा में हो, मामूली कोठरी में हो अथवा जंगल में हो। यदि वह उत्तम स्थान है जो स्वामी के लिए प्राप्त हो सकता है, तो वह उस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र करेगा और वो जगह सेनाओं के प्रभु के लिए पवित्र हो जाएगी। परमेश्वर के घर में प्रार्थना का ढंग। जब उपासक सभा घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें शिष्टता के साथ खामोशी से अपनी अपनी जगह बैठ जाना चाहिए। यदि कमरे में चूल्हा स्टव है तो उचित नहीं कि सब उसके इर्द गिर्द लापरवाही से एकत्र हो जाएं। उपासना घर में आराधना से पहले या बाद सामान्य बातचीत, फुसफुसाने तथा हंसी की मुमानियत होनी चाहिए। उपासकों में उत्साही भक्ति का चरितार्थ होना चाहिए। यदि आराधना के आरंभ से पूर्व किसी को कुछ मिनट ठहरना पड़े तो वे खामोशी के साथ ध्यान करें और भक्ति भाव को प्रकट करें और हृदय को परमेश्वर की ओर प्रार्थना में लगाएं, ताकि आराधना उनके प्रति लाभदायक सिद्ध हो और दूसरी आत्माओं के हृदय परिवर्तन की ओर अगुवाई हो। उनको याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूत आराधनालय में उपस्थित है। हम अपनी व्याकुलता से और ध्यान व प्रार्थना में व्यस्त न रहने से परमेश्वर के साथ मधुर संगति को खो डालते हैं। आध्यात्मिक स्थिति का अक्सर अवलोकन होना अवश्य है और मानव हृदय को धार्मिकता के सूर्य की ओर खींचना चाहिए। जब परमेश्वर के लोग उपासना गृह में आते हैं, यदि उनके हृदय में परमेश्वर के लिए यथार्थ सम्मान है और यह महसूस करते हैं कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो उस समय खामोशी में ही वाक्पटुता का आभास होगा। फुसफुसाना, हंसना तथा बातचीत करना भले ही सामान्य व्यवसायी जगहों में निर्दोष समझे जाएं, परंतु आराधनालय में उनके लिए आज्ञा न होनी चाहिए। मन को वचन सुनने पर प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि उसकी उचित महत्ता हो और हृदय भी प्रभावित हो जाए। जब मंडली का अध्यक्ष प्रवेश करता है तो बड़ी गंभीरता व सम्मान के साथ प्रवेश करें। ज्यों ही वह मंच पुलपिट में कदम रखता है, उसको खामोशी की प्रार्थना में झुककर परमेश्वर की सहायता के लिए विनती करनी चाहिए। इससे कितना सुंदर प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर पवित्रता तथा भय का प्रभाव पड़ेगा। उनका अध्यक्ष परमेश्वर के संग बातचीत कर रहा है। वह अपने को लोगों के सामने खड़े होने के पूर्व परमेश्वर के समक्ष अर्पण कर रहा है। सब पर गंभीरता छा जाती है और स्वर्गदूत निकट लाए जाते हैं। सभा में प्रत्येक, और वह भी जो परमेश्वर का भय मानता है, खामोशी प्रार्थना में सिर झुकाकर उसके साथ सम्मिलित हो कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उपासना पर आशीर्वाद देवे और मानव होठों द्वारा अपने सत्य के प्रचार को करने में शक्ति दे। विचार विमर्श तथा प्रार्थना की सभाएं थकाने वाली नहीं होनी चाहिए। यदि संभव हो तो सभों को नियत समय पर उपस्थित होना चाहिए, और यदि विलंब करने वाले भी हों, जो आधा घंटा या 15 मिनट पीछे आए, तो उनके लिए ठहरना नहीं चाहिए। यदि दो भी उपस्थित हों तो वे प्रतिज्ञा के अधिकारी हैं। यदि संभव हो तो मीटिंग को नियत समय पर आरंभ करना चाहिए। चाहे सभाप्रत थोड़ा हो या बहुत, ऐसे कार्य करो मानो स्वयं रूप परमेश्वर सामने हो।
परमेश्वर के लिए सच्चा आदर उसके असीम प्रताप के ज्ञान और उसकी उपस्थिति के अनुभव से प्रेरित होता है।
प्रत्येक हृदय पर अदृश्य परमेश्वर के उस ज्ञान से गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए।
प्रार्थना का समय तथा स्थान दोनों पवित्र है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर उपस्थित है,
इसलिए कि स्थिति और भावना दोनों में आदर प्रकट होता।
उसका नाम पवित्र और भय योग्य है।
भजन संहिता 111 आयत 9।
जब सभा का आरंभ प्रार्थना द्वारा होता है तो प्रत्येक घुटने को पवित्र परमेश्वर के सामने टिकना चाहिए
और प्रत्येक हृदय को खामोशी के साथ भक्ति में परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए।
विश्वास योग्य उपासकों की प्रार्थना सुनी जाएगी और वचन का प्रचार प्रभावशाली सिद्ध होगा।
परमेश्वर के घर में उपासकों की निर्जीव जैसी स्थिति ही एक बड़ा कारण स्पष्ट वाणी द्वारा निकाली जाती है।
वह आत्माओं के त्राण में परमेश्वर का एकमात्र है।
सारी आराधना गंभीरता तथा भय के साथ चलानी चाहिए,
मानो कि हम सभाओं के स्वामी की उपस्थिति में हों।
जब वचन का प्रचार हो रहा है तब भाइयों आपको स्मरण रखना चाहिए कि आप परमेश्वर की वाणी उसके प्रतिनिधि द्वारा सुन रहे हैं।
तब ध्यानपूर्वक सुनिए, सो न जाइए, क्योंकि इस नींद से आप उन्हीं शब्दों को खो बैठेंगे जो आपको बुरे मार्ग की ओर भटकने से बचाएंगे।
शैतान और उसके दूत ज्ञान इंद्रियों की अधमुई स्थिति उत्पन्न करने में संलग्न हैं, जिससे कि सावधानी, चेतावनी और सुधराव के वचन सुने न जाएं,
अथवा सुने भी जाएं तो उनके हृदय पर कुछ प्रभाव न हो और जीवन में सुधार न होने पाए।
कभी कभी श्रोतागण के ध्यान को एक छोटा बालक ऐसा खींच लेगा कि बहुमूल्य बीज अच्छी भूमि पर नहीं पड़ने पाता और फल नहीं लाता।
कभी कभी युवा पुरुष स्त्रियों में परमेश्वर के घर तथा उपासना के लिए इतना थोड़ा सम्मान होता है कि वे भाषण ही के बीच एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं।
यदि ये परमेश्वर के दूतों को भी देख सकते कि वे उनको देखते और कामों का हिसाब रखते तो वे शर्म के मारे अपने आप को धिक्कार देते।
परमेश्वर ध्यान देने वाले श्रोताओं को चाहता है।
जब लोग सो रहे थे तभी शैतान जंगली दाने बो गया।
जब अंतिम प्रार्थना भी की जाती है तो सबको फिर खामोश रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मसीह की शांति हाथ से जाती रहे।
बिना एक दूसरे को धक्का मुक्की दिए अथवा ऊंचे शब्द से बातें करते हुए बाहर निकलना चाहिए,
यह जानते हुए कि वे परमेश्वर के सामने उपस्थित है,
कि उसकी आंख उन पर लगी है और उनको ऐसा करना चाहिए मानो उसकी उपस्थिति में है।
मुलाकात करने के लिए या गप मारने के लिए रास्ते में नहीं रुक जाना चाहिए।
इस प्रकार उनका रास्ता रुक जाता है जो बाहर जाना चाहते हैं।
गिरजे का सारा हाथ सम्मान पवित्र सम्मान से भरपूर होना चाहिए।
उसे अपने पुराने मित्रों से मिलने व मुलाकात करने और सामान्य बातचीत और सांसारिक व्यवसायिक लेने देन की बातचीत का स्थान नहीं बनाना चाहिए।
इन्हें गिरजे से बाहर ही छोड़ देना चाहिए।
कुछ कुछ जगहों में लापरवाह गुलगपाड़े के साथ हंसने और पांवों की आवाज सुनी जाती है, जिससे परमेश्वर और दूतों का निरादर होता है।
बालकों में भक्ति की भावना होनी चाहिए।
माता पिता मसीह धर्म के स्तर को अपने बालकों के हृदय में ऊंचा कीजिए।
मसीह को वे अपने अनुभव में लावें,
ऐसा करने में उनको सहायता कीजिए।
उनके हृदय में परमेश्वर के घर के लिए अत्यधिक सम्मान होना चाहिए,
ऐसा उनको सिखलाइए।
उनको समझाइए कि जब परमेश्वर के घर में प्रवेश करते हैं तो उनके मन नम्र हों और इस प्रकार की विचार से गंभीर होना चाहिए।
यहां पर परमेश्वर है, यह उसका घर है।
मेरे विचार पवित्र और इरादे शुद्ध होने चाहिए।
मेरे मन में घमंड, द्वेष, डाह, कटु विचार, घृणा अथवा धोखा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया हुआ हूं।
यही जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से भेंट करता और उन्हें आशीर्वाद देता है।
परम पवित्र परमेश्वर जो अनंत काल लो बास करता है मुझको देखता है,
मेरे हृदय को छानता है और मेरे जीवन के सबसे गुप्त विचारों को और कार्यों को पढ़ता है।
युवकों के सूक्ष्म और ग्रहणशील मन परमेश्वर के दासों के परिश्रम का मूल्य अपने माता पिता के परिवारों के लगाते हैं।
बहुत से उन्हें आलोचना का विषय बनाते हैं और थोड़ी सी बातों को स्वीकार करते हैं।
यो परमेश्वर के संदेश की आलोचना होती और उस पर संदेह किया जाता है और एक हल्का विषय जैसा समझा जाता है। इन लापरवाह निंदित आलोचनाओं से युवकों पर जो भी प्रभाव पड़ता है, स्वर्गीय पुस्तक ही उनको प्रत्यक्ष करेंगे। इन बातों को माता पिता के ध्यान में आने की अपेक्षा बालक जल्दी से देख सकते और समझ सकते हैं। उनकी नैतिक ज्ञानेंद्रियां ऐसी पक्षपाती हो जाती हैं कि समय भी उन्हें दुरुस्त नहीं कर पाएगा। तब माता पिता अपने बालकों की कठोरता पर और उनकी नैतिक चेतनता उत्तेजित करने की कठिनाई पर खेद प्रकट करते हैं। परमेश्वर के नाम के लिए भी आदर प्रकट करना चाहिए, सामान्य रीति से अथवा बिना समझे बूझे न लेना चाहिए। प्रार्थना करते भी उसको बार बार अथवा व्यर्थ नहीं दोहराना चाहिए। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। भजन संहिता 111 आयत 9। दूध जब उसको लेते हैं तो अपने मुंह ढांक लेते हैं, तो हम जो पतित और पापी हैं उस नाम को कितना आदर के साथ लेना चाहिए। मुझे दिखाया गया कि परमेश्वर का नाम भय तथा श्रद्धापूर्ण उच्चारण करना आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये दो शब्द के साथ उपयोग किया जाता है और कोई कोई प्रार्थना करने के समय इनको बड़ी असावधानी और न समझ के साथ उच्चारण करते हैं। उनका उच्चारण करने के समय उनके मन में श्रद्धा या भक्ति का आभास नहीं रहता है, अतः आचरण परमेश्वर को अत्यंत अप्रसन्न करता है। ऐसे लोगों के मन में परमेश्वर की उपस्थिति की अथवा सत्य की चेतना नहीं है, अन्यथा वे महान एवं भयंकर परमेश्वर के प्रति, जो शीघ्र अंत के दिन में उनका न्याय करने आ रहा है, ऐसी निरादरता से नहीं बोलते। दूत ने कहा, उनको एक साथ न जोड़ो, क्योंकि उसका नाम भयंकर है। जितने परमेश्वर की महानता तथा वैभव को अनुभव करते हैं, वे उसके नाम को अपने ओठों से पवित्र भय के साथ उच्चारण करेंगे। वह ऐसी अगम्य ज्योति में निवास करता है जहां हमारा पहुंचना दुर्लभ है। उसको देखकर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। मुझे दिखाया गया कि कलीसिया को सफलता के पथ पर अग्रसर होने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा और संशोधन करना आवश्यक है। अर्ली राइटिंग्स पेज 122। हमें परमेश्वर के वचन बाइबल का सम्मान करना चाहिए। पवित्र शास्त्र के लिए हमें आदर प्रकट करना चाहिए और उसे सामान्य रीति से उपयोग में न लाना चाहिए अथवा लापरवाही से उठाना रखना न चाहिए। हंसी ठट्टा के रूप में शास्त्र का प्रयोग न करना चाहिए और न किसी चतुराई की कहावत के संकेत करने के लिए अनुवाद करने की चेष्टा करनी चाहिए। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वे उसे चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। नीति वचन 30:5, 12:6। सर्वोपरि बालकों को शिक्षा देनी चाहिए कि सच्चा आदर आज्ञा पालन द्वारा प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने किसी अनावश्यक वस्तु की आज्ञा नहीं दी है और आदर प्रकट करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय उसके मुंह से निकले हुए वचन की आज्ञाकारिता के। परमेश्वर के प्रतिनिधियों, अध्यक्षों, शिक्षकों तथा माता पिताओं के लिए जो उसके स्थान में व्याख्यान देने तथा कार्य करने को नियुक्त किए गए हैं, आदर प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर का ही आदर होना है जब उसके भक्तों का आदर किया जाता है। अच्छा होगा कि वृद्ध और युवक दोनों शास्त्र के इन शब्दों पर विचार करें जो प्रकट करते हैं कि उस स्थान का जहां परमेश्वर की विशेष उपस्थिति हो कैसा सम्मान होना चाहिए। उसने जलती झाड़ी में से मूसा को आज्ञा दी, अपने पांवों से जूतियों को उतार दें, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 3:5। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। उत्पत्ति 28:16-17।
सिद्धांत और नमूने से पवित्र वस्तुओं के विषय में आदर भाव में बोलने से आपको धर्म के लिए आदर प्रकट करना चाहिए। जब आप शास्त्र का उद्धरण करते हैं तो अपने होठों से कोई हल्का या तुच्छ न निकलना चाहिए।
जब आप बाइबल को हाथ में लेते हैं तो याद रखिए कि आप पवित्र भूमि में हैं, स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द हैं। यदि आपकी आंखें खोली जाएं तो आप उनको देख सकते हैं। आपकी चाल ढाल ऐसी हो कि जिस किसी व्यक्ति से आपका संबंध हो उस पर प्रभाव पड़े कि आपको पवित्र व शुद्ध वायुमंडल घेरे हुए है। कोई व्यर्थ शब्द, कोई निकृष्ट हंसी किसी आत्मा पर गलत शिक्षा की ओर जाने में जोर डाल सकती है। परमेश्वर के साथ लगातार संपर्क न होने के परिणाम भयंकर होते हैं। सबको साफ सुथरा रहने और अपने वस्त्र को उचित रूप से पहनने की शिक्षा देनी चाहिए। ऊपरी ठाट बाट में नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि यह मंदिर के लिए सर्वथा अनुचित है। वस्त्र दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे श्रद्धा तथा भक्ति जाती रहती है। लोगों का ध्यान पहिराव के उत्तम वस्त्र पर आकर्षित होता है और ऐसे विचार घुस जाते हैं जो उपासकों के मन में होने नहीं चाहिए। परमेश्वर ही सोचने का विषय और उपासना की वस्तु हो, और कोई वस्तु जो पवित्र आराधना से मन को अपनी ओर आकर्षित करती है वह परमेश्वर को घृणित है। पवित्र शास्त्र के नियमानुकूल चलते हुए पहरावे की सब बातों में बहुत सावधान होना चाहिए। पहनावा। बाहरी दुनिया पर देवी की मूर्ति शासन करने वाली रही है और वह अक्सर कलीसिया के बीच घुसना चाहती है। कलीसिया को उचित है कि वह परमेश्वर के वचन को अपना मापदंड बनावे और माता पिता को बुद्धिमानी के साथ इस विषय पर सोच विचार करना चाहिए। जब वे देखते हैं कि उनके बालक सांसारिक पहनावे की ओर झुक रहे हैं तो उनको इब्राहिम की भांति अपने परिवार को दृढ़तापूर्वक अनुशासन करना चाहिए। उनको संसार के साथ मिलाने के बजाय परमेश्वर के साथ संपर्क कराना चाहिए। अपने भड़कीले वस्त्र से कोई परमेश्वर के मंदिर का अपमान न करे। वहां पर परमेश्वर और स्वर्गदूत उपस्थित रहते हैं। इज़राइल के पवित्र परमेश्वर ने अपने प्रेरितों द्वारा कहा है, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पहला पत्रस 3:3-4।